શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા અષ્ટમ અધ્યાય શ્લોક છે. જ્ઞાન પાપી સ્મરણ ભાવમ યજ્ઞં પાપિ સ્મરણ ભાવમ જલં તંતે કળેવરમ જલંત્યંતે કળેવરમ તંતમે વૈતે કુંતેય સદા તદ્ભાવમાવિદા સદા તદ્ભાવમાવિદા જ્ઞં જ્ઞં પાપિ સ્મરણ ભાવમ જલંત્યંતે કળેવરમ તંતમેવેતિ કુંતેય જયંતે કળેવરંતમેવેતિકૌંતેય સદા તદ્ભાવમાવિદા જયંત્યંતે કળેવરમ તંતમેવેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવમાવિદા જયંત્યં પાપિ સ્મરણ ભાવમ જયંત્યંતે કળેવરમ તંતમેવેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવમાવિદા જયંત્યં પાપિ સ્મરણ ભાવમ જયંત્યંતે કળેવરમ તંતમેવેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવમાવિદા જયંત્યં પાપિ સ્મરણ ભાવમ જયંત્યંતે કળેવરમ તંતમેવેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવમાવિદા જ્ઞાન જીસ બાપ ભી કિસી ભી સ્મરણ સ્મરણ કરતે હુએ ભાવમ સ્વભાવ કો ત્યજંતિ પરિત્યાગ કરતા હૈ અંતે અંત મેં કળેવરમ શરીર કો તમ તમ વૈસા હી એવ નિશ્ચય હી એતિ પ્રાપ્ત કરતા હે કૌંતેય હે કુંતી પુત્ર સદા સદૈવ તબ ઉસ ભાવ ભાવ ભાવિત સ્મરણ કરતા હુઆ સંબંધ એ કુંતીપુત્ર સ शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप में प्राप्त होता है। तात्पर्य बताया गया है यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में तमोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हुए करते हैं तो सॉरी सत्वगुणी होते हैं और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना है यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव का प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप में कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य अर्थात आध्यात्मिक होगी, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। तो ये आज का जो बौद्ध का श्लोक है ये मेरा अंतिम श्लोक है, मैं कल चला जाऊंगा। तो ये जो है जन जन बापी स्मरण भाव, हम सब समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। जो मन है वो सब समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मन का धर्म क्या है? थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन है मन का धर्म। सोचना और अनुभव करना और इच्छा करना, ये मन का धर्म है। ये मन सब समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है या कुछ फीलिंग अनुभव करता है या कुछ इच्छा करता है। तो जैसे मन की इच्छा होती है, इसमें इंग्रजी में एक प्रवर्ब है इंग्रजी में, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जो हम सोचते हैं भगवान इसे हमको देते हैं। ये उपनिषद में भी बताया गया है जो नित्य नित्याना, भगवान नित्य है वो सब समय रहते हैं, अतीत में थे अभी है और भविष्य में भी रहेंगे। तो हम भी ऐसे हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम भी नित्य है लेकिन हमारे लिए वो नित्यानंद बहुवचन का प्रयोग किया गया, भगवान एक वचन में नित्य, हम बहुवचन में नित्याना। तो ये उपनिषद में बताया गया है नित्य नित्याना, चेतन चेतनाना। भगवान चेतनशील है और हम भी चेतनशील है, तो हम बहुवचन में है चेतनाना, चेतन चेतनाना। हमारा जो चेतना है ये बहुत उन्नत चेतना हम प्राप्त किए हैं। जब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं तो 80 लाख 80 लाख योनि प्राप्त कर पार होने के बाद एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, ये पद्म पुराण में आता है। तो ये है जड़ा नवलक्षाणी, जल जीव जितने हैं वो 9 लाख प्रकार के हैं। तो उसके बाद स्थावर जन्म पाते हैं, जैसे वृक्ष पेड़ वगैरह ये सब स्थावर है, एक ही स्थान में रहते हैं, ये 20 लाख के प्रकार के हैं। तो उसके बाद कृमय और रुद्र संख्यक, छोटा छोटा जो कृमि होते हैं वो 11 लाख का प्रकार का है। तो उसके बाद पक्षिणाम दशलक्षाणी, पक्षी जन्म प्राप्त होते हैं वो 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं, और उसके बाद 30 लाख प्रकार के पशुएं होते हैं। तो ये जो 80 लाख जन्म हुआ उसी सब जोनि में मनुष्य जो जीव का है चेतना इतना उन्नत नहीं है, लेकिन जब मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं 80 लाख जन्म के बाद एक मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं तो उनका जो चेतना है बहुत उन्नत चेतना है। ये 5 तरह का चेतना होते हैं, 5 तरह का चेतना होते हैं। तो वो जो 80 लाख जो मनुष्य जो प्राणी है उनका चेतना बहुत नीच स्तर के हैं, बहुत लो कॉन्शसनेस। वो क्या है, वो है आवृत चेतना और संकुचित चेतना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कवर्ड कॉन्शसनेस, श्रंकन कॉन्शसनेस। उनका चेतना इतना उन्नत नहीं है, लेकिन जब हम मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं तो हमारा चेतना एक उन्नत स्तर के आते हैं। वो क्या है, मुकुलित चेतना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग कॉन्शसनेस। तो ये जो मुकुलित चेतना होते हैं, हमारे हम सबका जो मुकुलित चेतना है, सब मनुष्यों का मुकुलित चेतना है। तो ये चेतना प्राप्त होकर अगर हम उस जो नीचे का जो प्राणी है पशु पक्षी इत्यादि उस तरह हम सोचेंगे तो हम पशु से बेहतर नहीं है, ये बताया गया है उपनिषद उपदेश मुद्रा में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशुभि नराणाम् धर्मं हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। जो हमारा जो शारीरिक आवश्यकता है जैसे आहार निद्रा और सुरक्षा, सुरक्षा के लिए चेष्टा करना, और जो शादी ग्रह करते हैं जन्म करते हैं बच्चा पैदा करते हैं, तो ये जो 4 तरह का कार्य है ये शारीरिक आवश्यकता है, ये पशु भी करता है। तो अगर एक मनुष्य जन्म प्राप्त होकर उसी वो जो चेतना है उसी चेतना में उसको लगाता है, इसी कार्य में लगाता है, शरीर की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं, तो ये पशु से बेहतर नहीं है, पशु से बेहतर नहीं है। तो मनुष्य का चेतना जो है ये एक उन्नत चेतना है, इसको कहते हैं बडिंग कॉन्शसनेस, मुकुलित चेतना। तो ये हम अभी ये सुजग प्राप्त हुए हैं, इस चेतना को और उन्नति करें, चेतना जो मुकुलित चेतना स्तर है इसको और उन्नति करें। कैसे उन्नति करेंगे, इस साधु संघ के बाद साधु संघ के द्वारा इस चेतना को हम उन्नति कर सकते हैं। जो साधु संघ नहीं करते हैं वो इस चेतना को उन्नत नहीं करेंगे, उन्नत नहीं कर पाएंगे, वो चेतना का अवनति हो जाएगा। दो मनुष्य जन्म के बाद वो पेट पशु पक्षी हो सकते हैं। 14 अध्याय में भगवान बताएंगे इसको। ऊर्जं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्यं तिष्ठन्ति राजसा जघन्यं गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमगुण में हम कार्य करेंगे, पशु पक्षी तरह कार्य करेंगे, जो शरीर की आवश्यकता के लिए कार्य करेंगे, तो अगले जन्म में हो सकता है हम पशु भी हो जाए। जैसे ये एक अलग प्रसंग है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण है। एक भरत महाराज थे जो बहुत उन्नत स्तर पे थे, जो उनका चेतना था बहुत उन्नत चेतना था, लेकिन मरने के समय जो यहाँ कहा गया है जंजन भावी स्मरण भाव, मरने के समय उन्होंने हिरण का चिंतन किया। तो उसके मरने के बाद उसने एक हिरण शरीर प्राप्त हुआ। वो भरत जो है, भरत महाराज थे, समग्र पृथ्वी का सम्राट थे भरत। उनके अनुसार इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो ये इतने उच्च स्तर चेतन में होकर भी उनका पतन हो गया, और दूसरों के बारे में क्या कहेंगे। तो ये जो है, हम हमारे जो चेतना होते हैं, ये अगर साधु संग करेंगे तो साधु संग में हमको क्या लाभ होगा साधु संग में, ये बताया गया है। रघु गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंह में बताते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। आपका कुछ श्रद्धा है इसलिए आप साधु संग करते हैं, यहाँ आए हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग से क्या होता है, भजन क्रिया। साधु बताते हैं भगवान को भजन करने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु बताते हैं भगवान को भजन करने के लिए, और जो असाधु है वो नहीं बताएगा, वो बताएगा दूसरों को भजन करो, भगवान को नहीं भजन करो। जो साधु होते हैं वो भगवान को भजन करने के लिए बोले पाएंगे। तो जब हम भगवान को भजन करेंगे तो क्या होगा, ना अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ क्या है, जैसे नहीं चाहिए वो आ जाता है, ये अनर्थ है। जैसे चार तरह का अनर्थ होते हैं, जैसे हम नहीं चाहते हैं जो निषाद द्रव्य सेवन करने के लिए, फिर भी वो असाधु संघ में असत्संग में वो निषाद द्रव्य सेवन करते हैं, चाय पान बीड़ी सिगरेट ये सब जो है वो सेवन करते हैं, ये अनर्थ है। तो ये जब साधु संग करेंगे और भजन करेंगे, साधु के कहने पर हम भजन करेंगे, तो ये अनर्थ सब चला जाएगा, निवृत्ति होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा। जो अनर्थ जब निवृत्ति होगा तो क्या होगा, ना भगवान के भजन के निष्ठा आएगा, निष्ठा स्तर आएगा, और निष्ठा के बाद रुचि आएगा, टेस्ट आएगा। हम भजन करने से हमको एक आनंद लगेगा, ये रुचि है। तो उसके बाद आसक्ति होता है, अटैचमेंट होता है। जैसे हम जो निशा द्रव्य सेवन करते हैं वो इतना अटैचमेंट है, इतना आसक्ति है, वो छोड़ नहीं सकते हैं। जानते हुए भी ये निशा द्रव्य सेवन करने से शरीर को क्षति पहुंचता है, फिर भी वो सेवन करता है, निशा द्रव्य सेवन करता है, क्योंकि वो उनका आसक्ति हो गया है। दूसरा, भगवान के भजन में भी आसक्ति हो जाता है। तो आसक्ति के बाद स्तर है
भाव स्तर, इसको भाव कहते हैं। तो ये जो भरत महाराज ये उसी स्तर के थे, भगवान के साथ डायरेक्ट बातचीत करते हैं, करते थे, जिसे हम अभी कर रहे हैं। तो ये जो भरत महाराज उसी स्तर के थे, उसका चेतन उतने उच्च स्तर पर थे, फिर भी उनका जो चिंतन आया मरने के समय, हिरण का चिंतन किए, ये भागवत में बताया गया है, पंचम स्कंद में आया है। तो हिरण का चिंतन किए तो नेक्स्ट पार्ट में वो हिरण बन गया। लेकिन जो भजन का इतने भजन किए थे, इसलिए उनका पूर्वजन्म का स्मृति था, पूर्वजन्म में वो भरत महाराज थे, ये स्मृति था उनका। हिरण होने पर भी उन्हें ये स्मृति था, वो पूर्वजन्म में भरत महाराज थे। तो इसलिए उन्होंने जो हिरण, जो हिरण का जो सोसाइटी होता है, हिरण का जो झुंड थे, वहां नहीं रहते हैं, रहते थे वो एक ऋषि के आश्रम में रहते थे। और वहां जो ऋषि सब, जो ऋषि का आश्रम है, वहां थोड़ा प्रसाद जो बचता है उसको रखते थे, वो पशु पक्षी आकर खाते हैं। तो हिरण उसी को खाकर रहता था। और वो जब उनका अंतिम समय आ गया तो जल में प्रवेश करके भगवान को चिंतन करके वो शरीर छोड़ दिए, हिरण का शरीर छोड़ दिए। तो उसके बाद उन्हें एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। तो वो सब मालूम था, पूर्व दो जन्म के बारे में मालूम था, हमारा पूर्व जन्म क्या थे हमको मालूम नहीं, लेकिन उनको पहले जो दो जन्म है वो दो जन्म के बारे में पता था। तो इसलिए वो भगवान को भजन करता था, लेकिन जड़ की तरह कार्य करता था, जड़ कुछ नहीं बोलता था। जैसे वो बहुत पागल व्यक्ति है, ऐसे लोग समझते थे, इतना ऐसी तरह बर्ताव कर रहा था जड़ भरत, उनका नाम था जड़ भरत। तो ये जो भाव स्तर पर भी उनका पतन हो गया, और दूसरों का क्या हम कहेंगे। तो ये जो हमारा चेतना है, इस चेतना को हम उन्नत करके एक और एक स्तर पर ला सकते हैं, जिसको कहते हैं बड़े ब्लूजरिंग कॉन्शियसनेस, विकसित चेतना, संस्कृत में कहते हैं विकसित चेतना। विकसित चेतना मतलब है ब्लूजरिंग कॉन्शियसनेस। जैसे जो फूल है वो पहले एक कड़ी का तरह रहता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रस्फुटित होते हैं, तो इसको कहते हैं बडिंग ब्लूजरिंग कॉन्शियसनेस, मुकुट विकसित चेतना। और उस चेतना को अगर फिर हम साधु संघ के द्वारा भजन करेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे, तो ये चेतना हमारा और उन्नत होकर फुल्ली ब्लूजम्ड कॉन्शियसनेस, पूर्ण विकसित चेतना इस स्तर पर आएगा। ये जो पूर्ण विकसित चेतना है, इसको कहते हैं कृष्ण चेतना। हमारा जो संघ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, कृष्ण भावना है, कृष्ण चेतना। ये कृष्ण चेतना स्तर पर हम आ सकते हैं। जब साधु संग करेंगे तो हमारा चेतना इतना उन्नत होकर कृष्ण चेतना में परिवर्तित हो जाएगा। भगवत गीता में बताया गया है कृष्ण चेतना क्या है। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति। भगवत गीता षष्ठ अध्याय में भगवान बताते हैं, जो मां पश्यति सर्वत्र, जहां देखते हैं वहां वो भगवान को देखते हैं। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जिसको भी देखते हैं उन्हीं में भगवान को देखते हैं। तो ये है कृष्ण चेतना। हमारा जो प्रभुपाद ने जब अमेरिका यहाँ तो शुरू किए थे, आज हम गए थे वो जगह जो है अंतिया तालाब है उसके पास जो एक वुमेन्स क्लब है वहाँ अभी सिलाई शिक्षा दिया जाता है। तो वहाँ प्रभुपाद ने आए थे पहले 1952 में यहाँ आए थे। यहाँ कृष्ण चेतना आंदोलन शुरू करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उस समय तो जो लीग ऑफ डिवोटीज शुरू किए थे लीग ऑफ डिवोटीज, लेकिन उस समय जो प्रभुपाद बाहर चले गए तो वो उस समय जो गवर्नर थे उनका जो पत्नी थे उसको आज्ञा कर लिए और उसको एक वुमेन्स क्लब बना दिए। आजकल अभी वो वुमेन्स क्लब ही है। तो प्रभुपाद ने अमेरिका गए, अमेरिका में वहाँ जो 1965 में गए इंडिया से 1965 में गए वहाँ एक साल तक वो ट्राई कर रहे थे इस संघ को स्थापन करने के लिए, लेकिन एक साल के बाद तो सब समय सोचते थे चले जाने के। वो एक जलदूत जो है जल जहाज है उसी में जा गए थे, जलदूत जहाज में गए थे तो फ्री टिकट मिला था, रिटर्न टिकट भी उनके पास थे। तो वो सब समय सोच रहे थे हम चले जाएंगे, कब वो जहाज जाएगा वो जाकर ऑफिस में पूछताछ करते थे। लेकिन एक साल के बाद ये हमारा जो इस्कॉन है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ये स्थापित हुआ, अमेरिका में स्थापित हुआ। जब वो स्थापित हुआ प्रभुपाद ने उसको क्या नाम देंगे, कि उनका जो शिष्य सब थे उनके साथ बातचीत कर रहे थे कैसे नाम देंगे। सो ये जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कुछ शिष्यों ने बोले सुझाव दिए प्रभुपाद इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस ना करके उसको गॉड कॉन्शियसनेस कर देंगे, ये ठीक रहेगा। कृष्णा जो कृष्ण शब्द है उसका डिक्शनरी में आप देखेंगे मीनिंग देखेंगे इसमें लिखा है हिंदू गॉड, कृष्ण को हिंदू गॉड बताया गया है डिक्शनरी में आप देखेंगे। तो प्रभुपाद बोलते प्रभुपाद ने कहे नहीं नहीं हम अगर गॉड कॉन्शियसनेस करेंगे तो लोग किसी को भी गॉड कहेंगे। आजकल हमारे उड़ीसा या इंडिया में बहुत सारे तथाकथित अवतार है जिनको हम भगवान कहते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। कृष्णा तो भगवान स्वयं भागवत में बताया गया है, बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया गया प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय में। उसके बाद सूत्र गोस्वामी कहते हैं इति चांस पड़ा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जब जो राम जी है नृसिंह है बड़ा वामन देव है वो सब बहुत सारे अवतार हैं, ये सब भगवान का अंश है या अंश का अंश है बड़ा बोलते हैं, लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं कृष्णा जो है वो ही भगवान है। तो इसलिए हमारा संघ का नाम हुआ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाहर में हम गए थे बहुत रिसेंटली हम गए थे फॉरेन कंट्री गए थे, वहाँ जो इस्कन कहने से वो नहीं समझते हैं, वो हरे कृष्ण मंदिर कहने से वो समझ जाते हैं हरे कृष्ण टेम्पल। इंडिया में भी बहुत जगह है हरे कृष्ण, यहाँ भी हरे कृष्ण टेम्पल बोलते हैं। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण चेतना ये चेतना सबसे उन्नत चेतना है। अगर हम मानव जन्म पाए हैं तो हमारा कर्तव्य है हमारा चेतना को उसी स्तर पर लेने का, ये हमारा मनुष्य जन्म का परम सिद्धि होगा, अल्टीमेट सक्सेस ये है। तो हम बता रहे थे जो मन का धर्म है ये तीन तरह का है, एक है थिंकिंग सोचना चिंता करना और एक है फीलिंग अनुभव करना और एक है विलिंग इच्छा करना। तो ये जो मन का कार्य चलता रहता है तो हम जिस स्तर पर है उसी स्तर से कैसे उन्नत स्तर जाएंगे इसको हम सोचना चाहिए, इसी बारे में हम कार्य करना चाहिए। भगवत गीता षष्ठ अध्याय में भगवान बताते हैं जे आत्मेव ही आत्मन बंधु और आत्मेव रूपरात्मा, बंधुरात्मा मनुष्य जैना केवा कनाधिक अनात्मनुष्य शत्रु के वर्तिता त्वेव शत्रुवत् उद्धरेगा मनात्मान नात्मान अवसादे आत्मेगो ही आत्मन बंधु और आत्मेगो रिपुरात्मन। ये जो मन है इसको भी आत्मा बोलते हैं, शरीर को भी आत्मा बोलते हैं और आत्मा को तो आत्मा बोलेंगे। तो आत्मा का तीन अर्थ है, एक है आत्मा, दूसरा है शरीर, तीसरा है मन। जो भगवान बताते हैं भगवद गीता षष्ठ अध्याय में उद्धरेदात मनात्मान, ये जो हमारा मन है उसको हम उन्नति करेंगे, उन्नत स्तर को लेंगे। उद्धरेदात मनात्मान नात्मान अवसाद, मन को नीचे स्तर को नहीं लेना चाहिए। आत्मे में ही आत्मन बंधु, अगर हम हमारा मन को उच्च स्तर को लेंगे तो ये हमारा बंधु होगा, लेकिन जो आत्मा को नीच स्तर को ले जाएंगे तो ये हमारा शत्रु होगा। आत्मे में ही आत्मन बंधु और आत्मे में उपराधना। तो ये जो सोचना होता है, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, ये मन का कार्य है, ये मन का धर्म है। तो किसी ना किसी सोच हम करते हैं, सब समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो अंतिम समय जो होगा, जम जम बाप स्मरण भाव, अंतिम समय में जो स्मरण करेंगे जम जम बाप स्मरण भाव जदम तंते करेगा, जब शरीर को छोड़ने के समय जो सोचना, जो चिंता करेंगे, जो चिंता करें, चिंता ठीक है ना हिंदी शब्द, चिंतन करेंगे, वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जो चिंतन करेंगे इस शरीर को छोड़ने के बाद, वैसे ही हम शरीर पर और एक शरीर पाएंगे। ये भरत का उदाहरण प्रभुपाद ने दिए हैं। और एक उदाहरण है जो है हम बता रहे थे, ये जो है अजामिल, भरत देखिए कितना तफात है, कितना अंतर है। भरत ने अभी बताया, भरत ने बहुत उन्नत स्तर को गए थे, भाव स्तर को गए थे, जिस स्तर पर भगवान के साथ बातचीत करते थे, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, इस तरह का उसी स्तर को गए थे भरत महाराज। लेकिन और एक उदाहरण है वो अजामिल, वो तो भगवान के बारे में सोचता नहीं था, बहुत सारे पाप कार्य किए थे। बताया जाता है चित्रगुप्त ने जो उसका पांजी बनाया थे, वो बहुत सारे पाप का लिस्ट था, विराट पट लिस्ट, बहुत बड़ा लिस्ट था। लेकिन जो अंत समय म्रियमाण हरे नाम, अंत समय उन्होंने भगवान का नाम ले लिया, म्रियमाण हरे नाम। कैसे लिया? गृणन पुत्र प्रचारितम, पुत्र को इशारा करके वो नाम लिया। वो मरने के संभक्त, उनका उम्र था 88 उम्र था इसका, 88 का। तो वो उसका 10 बच्चे थे, तो जो सबसे छोटा लड़का था वो 5 साल का था और उसका नाम था नारायण। तो जब 88 हो गया, 88 तक उन्होंने बहुत सारे पाप कार्य किए, जैसे मुख्य रूप से द्यूतम पानम स्त्रियम सुना, ये सब पाप कार्य होते हैं, द्यूत क्रीड़ा, निशा द्रव्य जो है और जो जीव हत्या होते हैं उसको सुना बोलते हैं, संस्कृत में सुना बोलते हैं, इसका मतलब जो मांस मछली सब खाते हैं, ये सब जीव हत्या होते हैं। तो ये सब पाप करते हैं जो अजामिल 88 तक उसी पाप कर रहे थे। लेकिन मरने के समय जब दिन जमदूतों आए, तीन जमदूतों, बहुत भयंकर रूप था उनका, बहुत भयंकर रूप था। सो उसको देखकर वो भय कर गया, डर के मारे उसने जो मोर का छोटा बच्चा था उसका नाम था नारायण, उसको पुकारा, नारायण आय इसे पुकारा, संस्कृत में बताया गया है कार्यक्रम में। तो ये जो नारायण का नाम लिया तो उस समय फौरन नारायण के चार दूतों आ गए, भगवान नारायण के चार दूत आ गए। क्यों चार दूत आए? क्योंकि उन्होंने चार अक्षर लिए, नारायण चार अक्षर लिए। क्यों तीन दूत आए थे जमराज के? क्योंकि हम तीन तरह का कार्य करते हैं, शरीर मन और वचन, तीन तरह का कार्य करते हैं, इसलिए तीन दूत आए थे जमराज के दूत। और वो जो चतुर अक्षर लिए नारायण, ये चार अक्षर है, इसलिए भगवान नारायण के चार दूतों आ गए। तो नारायण के दूतों और जम के दूतों के बारे में संवाद विवाद बाद विवाद हुआ, इसे बताया गया षष्ठ स्कंद भागवतम का षष्ठ स्कंद द्वितीय अध्याय में इसे बताया गया है, क्या धर्म है क्या अधर्म है इसे बताया गया, कैसे धर्म से प्रायश्चित मिलेगा, अधर्म से क्या कैसे प्रायश्चित मिलेगा, इसे जमराज के दूतों ये सब वेद जानते थे तो उन्होंने बताया, सब बताया इसे प्रायश्चित होते हैं, छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित, बड़े पाप के लिए बड़े प्रायश्चित, ये सब बताए। लेकिन उनको मालूम नहीं था सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है। जमराज के दूतों धर्मराज है, जमराज जो धर्मराज है वो विचार करते हैं, जब लोग मरते मर जाते हैं तो उनका एक शरीर जाता है, जय श्री राधा गोविंद देव की, हम जो कार्य करते हैं ये सब रिकॉर्ड होता है, जमराज के पास वो सब रिकॉर्डिंग रहता है, चित्रगुप्त भी रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत सारे देवता सब रिकॉर्डिंग करते हैं क्या हम कार्य कर रहे हैं। कर्मणा देव नेत्रेण, दिन में जो कार्य करते हैं सूर्य देवता देखते हैं, रात में जो कार्य करते हैं रात्रि का देवता है वो देखते हैं, पवन देव देखते हैं, ये सब देवता सब साक्षी रहते हैं, जो कुछ करते हैं वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जमराज विचार सुनाता है वो ये इस पाप कार्य किए, ये सब इतने पुण्य कार्य किए, इसका फलस्वरूप उन्होंने इतने साल नरक जाएगा, इतने साल स्वर्ग जाएगा, ये सब बताया गया है। जमराज के महा जो है वो विचार होता है, हमारा यह जो विचार होता है, हमारा जो कोर्ट है वहाँ जो विचार होती है विचार देते हैं। लेकिन कलिजुग में बताया गया है न्याय दौर्बल्यम, कलिजुग में वो ठीक तरह का न्याय नहीं मिलेगा, जिसके पास धन है वो न्याय को बदल देगा, विचारपति को घूस देकर वो विचार बदल देगा, भागवत में बताया गया है। लेकिन जमराज के दरबार में इसे घूस नहीं चलता, आप थोड़ा घूस दे देंगे वो थोड़ा उनका विचार बदल देंगे, नहीं, वो जो पाप किए हैं इसका फल मिलेगा, जो पुण्य किए हैं उसका फल मिलेगा, इसे विचार होगा। जो जमराज के दूतों हैं वो सबको मालूम है, उनका सब क्या है, कितना पाप किया है, क्या क्या धन मिलेगा, इसे उनको मालूम था। लेकिन उनको नहीं मालूम था एक ऐसा क्या ऐसे जो इतना सबसे अच्छा पाप से निष्कृति का एक अच्छा तरीका उनको मालूम नहीं था, क्योंकि जमराज ने उनको नहीं बताया है, क्योंकि उन्होंने इतना क्वालिफाइड नहीं थे, उनका योग्यता इतना नहीं था, या जो सबसे अच्छा विचार है उनको नहीं दिया गया था। तो नारायण के दूत ने बताया, तो जमराज के दूतों ने उसे बोले, ये जो अजामिल है बहुत सारे पाप किए हैं, वो उसको निश बताए इतना इतना से पाप किए, तो उनको हमें हम अब सब इसको ले जाएंगे जमराज के दरबार ले जाएंगे, वहां विचार होगा और वहां से वो नर्क भोगेगा। 26 तरह का नर्क है भागवत में, प्रथम स्कंध के 26 अध्याय में 28 तरह का नर्क का वर्णन किया गया है। तो हम अजामिल को उसी नर्क को लेंगे से बताए, लेकिन नारायण के दूतों ने कहा, ये तुम जमराज के दूत हो, तुम धर्मराज के दूत हो, तुमको धर्म मालूम नहीं, इतना ही धर्म जानते हो, उससे ऊपर क्या धर्म है मालूम नहीं तुमको। अयम ही निष्केल विरसो जन्म कुट्या साह भी, तुम इस जन्म के बारे में बताते हो, इस जन्म ने इतने इतने पाप किए, ये कोटि जन्म ने जो भी पाप किए हैं वो सब खत्म हो गया। तो जमराज के दूतों ने आश्चर्य हो गए, कैसे मुक्त हो गया, क्या किया है उन्होंने। ना जब ब्याज हार दिवसो, जब तुम उसको ले जा रहे थे, रस्सी लगा कर ले जा रहे थे, उस समय उसने क्या कहा था, जब ब्याज हार दिवसो नाम स्वस्थ है न घरे, ना उन्होंने नारायण क्या था नारायण कहा था, ना वही हरि का नाम है, स्वस्थ है न वो सब मंगल देगा, स्वस्थ है न हरे, ना ये भगवान को नहीं पुकारा था, ये उसका बच्चे को पुकार रहा था। तो नारायण के दूतों ने बोले, तुमको मालूम नहीं भगवान का नाम का क्या महिमा है, भगवान नाम को सांकेत्यं परिहासं स्तवं ग्रहणं भवा वैकुंठ नाम ग्रहणं मशेष अभारं विदु। इवनी अगर यदि कोई भी संकेत के संकेत से भगवान का नाम रहता है, जैसे हम आराम शब्द है ना, हिंदी में आराम कहते हैं ना, आराम से सो जाओ, ये सब आराम शब्द है, तो वहां आराम शब्द करने से भी वो भगवान नाम राम का नाम ले लेते हैं एक बताया गया है एक कुंभ पुराण में, इसी प्रसंग है, एक जवन जा रहा था जंगल में, तो उस समय एक बराह ने उसको आक्रमण किया, जब बराह ने उसको आक्रमण किया तो उन्होंने उस समय हराम बोल दिया, हराम, हम आराम कहते हैं, उन्होंने हराम कहा, बराह को हराम कहकर मर गया। तो लेकिन मरने के समय भगवान का नाम लिया, तो उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया, इसी पुराण में वर्णन किया गया है। तो ये नारायण के जो दूतों थे उन्होंने बताया, ये चार तरह का जो है इसको क्या कहते हैं, नामाभास कहते हैं, भगवान का शुद्ध नाम नहीं है फिर भी ये नामाभास है, संकेत करके भगवान का नाम लिया था अजामिल ने, कोई कोई परिहास करके भी भगवान का नाम लिए तो भी वो भगवान का नाम का फल पाएंगे। संकेत परिहास स्तोभम, स्तोभम मतलब जो नाटक होते हैं, नाटक में कोई नारद का अनुरोध करता है और नारायण नारायण बोलता है तो भी भगवान का नाम का फल प्राप्त होता है। संकेत परिहास स्तोभम खेड़ने व्यवहार, खेड़ा में बहुत इच्छा नहीं है फिर भी भगवान का नाम ले लिया तो भी उनको भगवान का नाम का फल मिलेगा। तो इसे म्रियमाण मृत्यु के समय अजामिल ने भगवान का नाम लिया, म्रियमाण हरे नाम गुणन पुत्र प्रचारितम, कैसे नाम लिया भगवान का, वो पुत्र को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया। अजामिलो भी बहुत सारे पाप कर्म करते हुए भी उन्होंने मुक्ति पा लिए, किमुत श्रद्धा गुणन, और दूसरों का कथा क्या कहेंगे। हम सब जीवित हैं अभी, हम सब पाप से मुक्त होकर भगवान का नाम लेंगे तो श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेंगे तो क्या फल होगा, हम इसके बारे में हम नहीं समझ सकेंगे कितना फल मिलेगा। एक आचार्य ने बताया इसको, तो ये हमको अभ्यास इसके बाद भगवान को बताएंगे। तस्मात सर्वेषु कार्येषु मां मनुस्मरत उद्यत, जो मृत्यु समय इतना महत्वपूर्ण है तो उसी मृत्यु आने के पहले भागवत में एक प्रसंग है, एक थे वो है दत्तात्रेय भगवान के अवतार है, तो उनका 24 गुरु थे, 24 गुरु थे। तो 24 गुरु के बताने के बाद उन्होंने बताया ये हमारा शरीर जो है ये भी हमारा एक गुरु है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवान्ते मानुष्यं अर्थतम अनित्यम अपीय वीर तोर्णं गतिर्नापते गणबुद्धिजावन निःश्रेयसा निःसकल सर्वतस्यात्। ये जो हम अभी बताए 80 लाख जन्म के बाद एक मानव जन्म प्राप्त होता है, तो ये दत्तात्रेय जी ने बताते हैं, जदु जी को बताते हैं, जो भगवान कृष्ण आए हैं जदु, उनका पूर्व वंशज है जदु, उनको बताते हैं भागवत में कृष्ण ने ये बात प्रसंग आया है, तो बताते हैं दत्तात्रेय जी ने ये लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु सम्मान दे 80 लाख जन्म के बाद एक मानव जन्म प्राप्त होते हैं। तो मानुषम अर्थदम अनित्यम अपीय धीर, ये जो मानुष जन्म हम प्राय हैं प्राप्त किए हैं ये इसका निश्चितता नहीं कि कितने साल हम जिएंगे। छोटा बच्चा भी मर जाता है, कुछ कहाँ कुछ एक्सीडेंट होकर भी मर जाते हैं, इसे है ये अनित्य है, हम कहीं नहीं कह सकते कितने साल हम बचेंगे। तो जब तक मृत्यु नहीं आता है तूर्णम गतेत न पतित अनुत जावन, जब तक मृत्यु नहीं आएगा तब तक हमको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, निश्रेय श्रेय क्या है उसको पूछना चाहिए। एक साधु के पास जाकर गुरु के पास जाकर उनको पूछना चाहिए हमारा जीवन का श्रेय क्या है। जैसे भगवद गीता में अर्जुन भगवान पूछते हैं, प्रभु आप बताइए, मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ क्या हमारा मेरे लिए क्या श्रेय है। कार्पण दोषो पद स्वभाव पृछामी तन धर्म समुदेता जेय स्थित में शिष्य स्त्रेयम साधनम तन प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण किया, मैं नहीं जानता हूँ क्या मेरे लिए श्रेय है, क्या उत्तम है मेरे लिए, युद्ध करना उत्तम है या नहीं, भिक्षा करना उत्तम है, मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ। तो प्रभु मैं आपका शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। तो ये जो दत्तात्रेय ने इसे बताया निश्चय सहायक, मनुष्य धर्म हम प्राप्त किए हैं तो मनुष्य धर्म का क्या श्रेय है ये इसको जानकर ऐसी कार्य करना चाहिए हमको। तो यहाँ भगवद गीता में भगवान बताएंगे तस्मात सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मरण जय श्री सब समय खाने के समय पीने के समय चलने के समय सोने के समय सब समय हम भगवान के बारे में सोचना चाहिए। कैसे सोचेंगे भगवान के बारे में ये भगवान बताएंगे कैसे। जो कुछ भी है ये सब भगवान का रूप है, भगवान का एक्सपांशन है जो कुछ भी है। कविंग पुराण हंसा सीतरमण रणिया स्मरे सर्वस्य धातारं चित्त रूपम आदि च वर्णन तमस परस्तात्। ये इसी अध्याय में आएगा। भगवान बताए कैसे हम भगवान को सोचेंगे, भगवान को कैसे स्मरण करेंगे। ये जो है ना जनजनवादी स्मरण भाव, कैसे हम स्मरण करेंगे, इसका सूत्र क्या है, तो भगवान बताएंगे। तो जब हम भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे तो जो जिसके बारे में सोचेंगे जो मुक्त के बाद हम ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होंगे। जैसे हम बताए भरत जी एक हिरण का शरीर प्राप्त हुए, तो हम जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुए हैं बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम भगवान की जो मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ क्या है, जो श्रेष्ठ लाभ है उसको प्राप्त करें। मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ लाभ जो है जो हम कल बताया थे जो भागवत में प्रसंग आया है जो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ लाभ क्या है ना, अंत समय जो भगवान को हम स्मरण करें, तो ये मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ लाभ है, और कुछ श्रेष्ठ लाभ नहीं है, ये शास्त्र में बताया गया है। तो हमको चाहिए कि हम किसी तरह हम थोड़ा प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, या इसके बाद बताएंगे भगवान बताएंगे। तो अभ्यास करो, तुम अभ्यास करो। जैसे हमारे कृष्ण भगवान संग में जो आते हैं तो हम कहते हैं थोड़ा भगवान का नाम जप करो, माला में जप करो, नित्य संख्या पूर्वक नाम गान नतिगी, संख्या पूर्वक एक से एक राउंड से शुरू करिए और 16 राउंड तक हमारा है, हम 16 राउंड करते हैं सब दिन, हर दिन 16 राउंड करते हैं। तो आप ही कीजिए, एक राउंड से शुरू कीजिए, तो एक ऐसे समय आएगा जब ये हम सब समय भगवान को ही स्मरण करेंगे। जो हमारा चेतना जो है हम बताए चेतना उसी स्तर पर जाएगा, कृष्ण चेतना स्तर पर जाएगा, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है सबसे उच्चतर का जो चेतन है वो है कृष्ण चेतना, उसी चेतन स्तर पर आप जा सकते हैं। ये हमारा मानव जन्म का श्रेष्ठ लाभ है। तो यहां से मेरा कथा को विश्राम देता हूं। जय श्री भगवत गीता की, जय श्री गोपाल महाराज की, जय श्री गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर मंदी।
No.